तत्र वर्षादीनां संख्यादि विधि प्रतिपत्त्यर्थमाह। अब वो जो वर्ष आदि हैं, वर्ष आदि का मतलब भरत वर्ष, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये सात। और आदि शब्द से फिर वर्षधर यानी जो पहाड़ है, पर्वत, वे, इनकी संख्या आदि की जो विधि है, विधि यानी प्रक्रिया, उसकी जानकारी देने के लिए आह सूत्र कहते हैं। द्विर धातु की खंडे, द्विर यानी जो विधि वहां पीछे में बताई गई थी वो दो बार हो जाएगी धातु की खंड में। द्विर का अर्थ होता है दो बार, द्वि यानी दो और एक सुच प्रत्यय होता है, इसमें बता ही रहे हैं शायद टीका में। भर्तादीनाम द्रव्याणाम यहाभ्या वृत्ति विवक्त भर्ताणी भर्तादीनाम द्रव्याणाम यहाभ्या वृत्तिर विवक्षिता। इस सूत्र में भरत आदिक द्रव्यों की अभ्यावृत्ति विवक्षित है। अभ्यावृत्ति मतलब उसका संबंध विवक्षित है। तत्र कथम सुच, फिर उसमें सुच प्रत्यय कैसे हो सकता है, तो बोलते अध्याह्रियमाण क्रियाभ्यावृत्ति द्योतनार्थ है सुच। जो अध्याह्रियमाण यानी जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है, उसकी क्रिया के साथ जो अभ्यावृत्ति है संबंध, उसको प्रकाशित करने के लिए सुच प्रत्यय है। यथा जैसे द्विस्तावान अयम प्रासादो मीयते इति, जैसे द्विस्तावान अयम यह जो प्रासाद है, महल है, वो द्विस मीयते दुगुना मापा जाता है, यानी किसी की अपेक्षा से वो महल दुगुना होगा, तो उसको इस अपेक्षा बताया। तो द्विस या द्विर है तो द्विह ऐसा बन जाता है, तो उसका अर्थ होता है दो बार या दुगुना। एवं द्विर धात की खंडे भारतादेव मीयन्ते, इस प्रकार द्विर धात की खंडे इस सूत्र में भरत आदिक मापे जाते हैं। तद यथा, उसका खुलासा कर रहे हैं, अभी तो ये थ्योरी हो गई, अब उसको बता रहे हैं कि किस प्रकार से। तो द्वाभ्याम मिश्वाकार, द्वाभ्याम इश्वाकार पर्वताभ्याम दक्षिणोत्तरा रायताभ्याम, दो जो इश्वाकार पर्वत है, ईश्व यानी बाण होता है और बाण का आकार सीधा सीधा होता है, सीधा बाण की गति भी सीधी होती है, तो इश्वाकार पर्वताभ्याम ऐसे दो सीधे पर्वतों से दक्षिण उत्तर आयताभ्याम, जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आयत है, लंबे हैं, विश्वाकार पर्वत जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ लंबे होते हैं, और लवणोद कालोद वेदिका स्पृष्ट कोटिभ्याम, लवण समुद्र और कालोद समुद्र, धातु की खंड की चर्चा चल रही है तो वो लवण समुद्र को एक तरफ से छुएगा इश्वाकार पर्वत, दो इश्वाकार पर्वत हैं धातु की खंड में, तो लवण समुद्र को एक तरफ छूता है और दूसरी तरफ कालोद समुद्र को जो धातु की खंड के उस तरफ है, आगे की तरफ। तो लवण और कालोद की वेदिका से स्पृष्ट है कोटिभ्याम, कोटियां जिसकी, किनारे जिसके, और विभक्तो धातु की खंड पूर्वापर, इस प्रकार धातु की खंड का विभाजन हो जाता है, पूर्व धातु की खंड और पश्चिम धातु की खंड। मतलब ये समझ लो कि ऐसे जम्बूद्वीप तो गोल हो गया, उसमें बीच में मेरु है, उसके पूर्व और पश्चिम दिशा में विदेह क्षेत्र है, उत्तर दक्षिण में फिर बाकी सारे क्षेत्र, उत्तर ऐरावत आदि है, नीचे भरत आदि है, ऐसे। अब धातु की खंड जो है उसको घेर करके जो समुद्र है, समुद्र को घेर करके धातु की खंड द्वीप है, ऐसे। तो धातु की खंड में जो है ये दक्षिण उत्तरतः, ये बताया है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ ऐसे एक पर्वत विस्तृत है, लंबा है, तो वो जो पर्वत है वो दो दो इश्वाकार पर्वत, इश्वाकार है ना बाण जैसे आकार वाले, ऐसे सीधे, अगर कहीं चित्र हो तो फिर उसमें अपन देख सकते हैं। अब ये समझ लो कि ऐसे ये गोल हो गया, फिर उसको घेर करके एक गोल हो गया, अंदर जो है जम्बूद्वीप है, उसके आगे लवण समुद्र, उसके आगे ये एक आकार बन गया, अब उसमें सबसे ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जाना है यहाँ मेरू से, तो उसके बीच में एक इश्वाकार पर्वत है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाला। तो दक्षिण में लवण समुद्र की वेदिका को उसका एक किनारा छू रहा है और उत्तर में कालोद समुद्र की वेदिका को उसका दूसरा किनारा छू रहा है। ऐसा है, उत्तर किनारा जो है उसका इश्वाकार का वो कालोद समुद्र की वेदिका को छू रहा है। वेदिका का मतलब उसकी जो किनारा, मतलब जो उसका घेराव है समझ लो। हाँ, धातकी खंड के दोनों तरफ समुद्र है, टापू ही है वो, द्वीप है, धातकी खंड द्वीप है। हाँ ऐसे ही है, धातकी खंड अंदर की तरफ से, अगर सुदर्शन मेरू की तरफ जाएंगे तो आप अंदर की तरफ से लवण समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं और फिर बाहर की तरफ कालोद समुद्र, उसके आगे पुष्कर द्वीप है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि धातकी खंड जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ एक इश्वाकार पर्वत से और नीचे दूसरे इश्वाकार पर्वत से। अब देखिए ऐसे एक लाइन खींच गई तो फिर धातकी खंड के दो भाग हो गए, तो पूर्वा पर इति, एक पूर्व धातकी खंड और दूसरा अपर धातकी खंड। समझ में आ रहा है ना, पूरा पूर्व धातकी खंड और अपर यानी पश्चिम धातकी खंड। तत्र पूर्वस्य अपरस्य च मध्य, उनमें पूर्व और अपर यानी पश्चिम इन दोनों के ठीक बीच में द्वौ मंदरो, दो मंदर यानी मेरु है। कुल पंच मेरु होते हैं ढाई द्वीप में, तो ये पहला मेरु तो यहाँ सुदर्शन मेरु सबसे बीच में जम्बू द्वीप के, ये धातकी खंड के बीचों बीच दो मेरु हैं, पूर्व धातकी खंड संबंधी एक और पश्चिम धातकी खंड संबंधी एक। तयोर उभय तो, उन मेरुओं के उभय तो माने दोनों बाजू, भरताधीन क्षेत्राणि हिमवदादयश्च वर्षधर पर्वताः, भरत आदि क्षेत्र होते हैं और हिमवान आदि वर्षधर पर्वत होते हैं। एवं द्वौ भरतौ द्वौ हिमवन्तौ इत्येवम् आदि संख्यानं द्विगुणं वेदितव्यम्। इस प्रकार दो भरत दो हिमवान इत्यादि संख्या को दुगुनी जान लेना चाहिए। आ गया ना समझ में, दो मेरु के आसपास, जैसे यहाँ जम्बूद्वीप में एक मेरु के आसपास जो व्यवस्था थी वैसे वहां पर दो मेरुओं के आसपास व्यवस्था होगी। जम्बू द्वीप हिमवद आदि नाम वर्षधराणाम यो विषकंबस। अब इसमें फर्क इतना है कि जम्बू द्वीप के हिमवान आदि पर्वतों का जो विषकंब यानी जो चौड़ाई है तद द्विगुणों धातकी खंडे, उससे दुगुना धातकी खंड में रहेगा हिमवद आदि नाम वर्षधराणाम, ठीक है। और वर्षधराश चक्रार वत अवस्थिता, वर्षधर जो रहते हैं वो यहाँ पर पहाड़ों की जो व्यवस्था है वो थोड़ी जम्बूद्वीप से अलग है। यहाँ क्या होगा कि चक्र के आरे के समान अवस्थित रहेंगे, जो मेरु पर्वत है ना बीच में उसमें ऐसे ऐसे निकलेंगे वो चक्र के आरे के समान। ये लेकिन मेरु पर्वत से आरे के समान है या बीच वाला जो सुमेरु है उसके उससे आरे के समान निकालना है। और विवर संस्थानानि क्षेत्राणी, और वो आरों के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उसके आकार वाले क्षेत्राणी क्षेत्र होते हैं। चक्र में जिस प्रकार आरे होते हैं उसी प्रकार ये पर्वत क्षेत्रों के मध्य में अवस्थित हैं, और चक्र में छिद्रों का जो आकार होता है वहां के क्षेत्रों का वही आकार है, ठीक है। वो तो अर्थ वही है मूल मूल में जो था। ये कहीं चित्र है क्या ढाई द्वीप का, किसमें? जैन तत्व विद्या में। अच्छा अच्छा, वो हमने भेज दिए जैन तत्व विद्या, हमने देखा नहीं ढाई द्वीप का कहीं नक्शा, देखना पता करना। हाँ आप पता करना, नीचे बना है क्या? उसको देख सकते हैं, या तो फिर त्रिलोकसार में बना होगा वो मिल जाएगा, त्रिलोकसार जो रखा ना आपने, हाँ वो तो उसमें दिया होगा त्रिलोकसार में। फिर जम्बूद्वीपे यत्र जम्बू वृक्ष स्थित, जम्बूद्वीप में जहां पर जम्बू वृक्ष स्थित है तत्र धातकी खंडे धातकी वृक्ष सपरिवार, वहीं पर धातकी खंड में वहीं पर धातकी वृक्ष सपरिवार स्थित है। और तद योगात उसके योग से यानी उसके समागम से धातकी खंड इति द्वीपस्य नाम प्रतीतम, धातकी खंड इस प्रकार द्वीप का नाम प्रतीतम निश्चित हुआ है। तत्परिक्षेपी उसको चारों तरफ घेरे हुए कालोध समुद्र, कालोध समुद्र है, टंकच्छन टंकच्छिन्न तीर्थ है, उसके जो तीर्थ यानी किनारे जो हैं वो टंकच्छिन्न टांकी से छेदे हुए हैं, और अष्टयोजन शत सहस्र वलय विष्कम्भ 8 लाख वलय विष्कम्भ उसकी चौड़ाई है कालोद समुद्र की। तत्परिक्षेपी कालोद समुद्र ठीक है, कालोद परिक्षेपी पुष्कर द्वीप, कालोद को घेरे हुए पुष्कर नाम का द्वीप है, षोडश योजन शत सहस्र वलय विष्कम्भ जो 16 लाख योजन वलय विष्कम्भ चौड़ा है, वलय विष्कम्भ यानी चूड़ी की जो मोटाई होती है ऐसी, किसी ने चूड़ी पहनी अब छोटी पतली वाली भी आती है और बड़ी बड़ी भी पहनते थे, तो उसकी जो ये मोटाई होती है उसको वलय विष्कम्भ बोलते हैं, तो उसकी मोटाई उतनी है। तत्र द्वीपांभोधि द्वीपांभोनिधि उन द्वीप और समुद्रों के विष्कम्भ द्विगुण परिक्लृप्तिवत, उनकी दुगुनी परिक्लृप्ति माने जानकारी के समान धातकी खंड वर्षादि द्विगुण वृद्धि प्रसंगे, तो धातकी खंड के जो क्षेत्र आदि हैं उनमें भी दुगुनी वृद्धि हो जाएगी ऐसा प्रसंग आने पर विशेष धातकी खंड के क्षेत्रादिक एक मिनट फिर से इस पंक्ति को पढ़ो, तत्र उनमें किन में धातकी खंड के आगे जो द्वीप समुद्र है उनमें द्वीपांभो निधि विष्कम्भ द्विगुण परिक्लृप्ति वत, जो उनकी चौड़ाई है उसमें दुगुनी की परिक्लृप्ति है माने एक निर्धारण है, उसी के समान धातकी खंड वर्षादि द्विगुण वृद्धि प्रसंग है, तो फिर पुष्कर द्वीप में धातकी खंड में जितने क्षेत्र हैं उससे और दुगने हो जाएंगे, माने यहां 2 मेरु है तो वहां 4 मेरु हो जाएंगे पुष्कर द्वीप में। तो ऐसा प्रसंग आने पर, क्योंकि अगर हम आगे का सूत्र नहीं कहेंगे तो ऐसे ही प्रसंग निकलेगा, इसलिए विशेष अवधारणार्थम विशेष निर्णय करने के लिए आह सूत्र कहते हैं पुष्करार्धेच, पुष्कर द्वीप में आधे भाग में धातकी खंड जैसी व्यवस्था रहेगी और उसके आगे क्या होगा तो उसके आगे अभी आगे के सूत्र में बता रहे हैं किम क्या आधे पुष्कर आधे द्वीप तक क्या, तो बोले कि द्विरीति अनुवर्तते दुगुना, ये अभी अनुवृत्ति चालू है, किम अपेक्षा द्विरावृत्ति है किस अपेक्षा वो दो की आवृत्ति है, आवृत्ति माने दोहराव, तो जम्बूद्वीप भरत हिमवदाद्यपेक्षयैव, जम्बूद्वीप संबंधी जो भरत हिमवान आदि है ना उनकी अपेक्षा से ही दुगुना लेना, कुत कैसे ये आपको कैसे मालूम पड़ा, शंकाकार शंका कर रहा है आचार्य महाराज से कि आपने कैसे जाना कि जम्बूद्वीप संबंधी भरत आदि से ही दुगुना लेना है, तो बोले व्याख्यानतः व्याख्यान के माध्यम से पूर्व गुरु परंपरा से जो व्याख्यान चला आ रहा है उससे ये बात समझ में आ जाती कि नहीं भरत ये जम्बूद्वीप संबंधी जो भरत आदि है उसी से दुगुना वहां परिमाण लेना है। यथा धातकी खंडे जिस प्रकार धातकी खंड में हिमवद आदि नाम विष्कम्भस हिमवान आदि पर्वतों का विष्कम्भ यानी चौड़ाई है तथा उसी प्रकार पुष्करार्धे हिमवद आदि नाम विष्कम्भो द्विगुण इति व्याख्यायते, उसी प्रकार पुष्कर के आधे भाग में हिमवान आदि का जो विष्कम्भ है वो दुगुना है इस तरह व्याख्यान किया जाता है। नामानितान्येव नाम उनके वही रहेंगे इश्वाकारौ मंदरौ च पूर्ववत, और इश्वाकार और मंदर भी धातकी खंड के समान ही रहेंगे। यत्र जम्बू वृक्षस तत्र पुष्करम, जहां जम्बू वृक्ष था जम्बू द्वीप में पुष्कर द्वीप में वहां पर पुष्कर रहेगा, पुष्कर का अर्थ कमल होता है, तो फिर पुष्कर कहां जमीन पर तो रहेगा नहीं, कमल जो होगा पानी में रहेगा। सब परिवारम लेकिन उसके परिवार कमल भी रहेंगे, अकेला एक कमल नहीं होगा सरोवर में, बहुत सारे कमल होंगे। ततएव उससे ही तस्य द्वीपस्य नाम रूढ़म पुष्कर द्वीप, उस कमल के कारण ही उस द्वीप का नाम रूढ़ हो गया पुष्कर द्वीप, इस प्रकार। अतः कथम पुष्कर अर्ध संघिया, अब पूछा कि भाई ये पुष्कर अर्ध ऐसा नाम क्यों दे दिया आपने, जब पुष्कर द्वीप पूरा द्वीप है तो उसके आधे भाग की व्यवस्था ऐसी क्यों बता दी। तो बोले कि मानुषोत्तर शैल, मानुषोत्तर शैलेन, मानुषोत्तर शैल का अर्थ होता पर्वत, कई लोगों का नाम रहता शैलेश, तो पर्वतों का ईश माने पर्वतों का मुख्य स्वामी सुमेरु पर्वत, शैलेश का अर्थ सुमेरु पर्वत है, तो वो नाम चलते हैं। तो मानुषोत्तर शैलेन, मानुषोत्तर पर्वत के द्वारा विभक्तार्धत्वात्, विभाजित है आधा भाग जिसका, ऐसा होने के कारण पुष्करार्ध संज्ञा, पुष्करार्ध ये नाम पड़ जाता है। अत्राह, यहां कोई कहता है किमर्थम जम्बूद्वीप हिमवद आदि संख्या द्विरावृत्ति पुष्करार्ध कथ्यते, जम्बूद्वीप और हिमवान आदि की संख्या दो आवृत्त द्विरावृत्ता, द्विरावृत्ता माने दुगुनी आवृत्त वाली पुष्करार्ध कथ्यते, ऐसा क्यों कहा जाता पुष्कर के आधे भाग में ऐसे डबल डबल हैं जम्बूद्वीप की जो व्यवस्था उसके। न पुनः कृत्स्न एव पुष्कर द्वीप है, बोले कि उसके पूरे पुष्कर द्वीप में ऐसा क्यों नहीं कहते, पूरे पुष्कर द्वीप में भी तो विभाग हो सकता है ना इन क्षेत्रों का, मेरु पर्वत आदि का, आधे पुष्कर में क्यों किया ऐसा विभाग, क्यों बता रहे हो ऐसा। इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानुषोत्तर नाम का एक पर्वत है उसके प्रांग माने पहले तक मनुष्याः, मनुष्य होते हैं। पुष्कर द्वीप बहुमध्य देश भागी, पुष्कर द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच बहुमध्य देश भागी, बीचों बीच वलयावृत, वलय वृत्तो, वलय वृत्त माने एक गोल चूड़ी के आकार वाला, मानुषोत्तरो नाम शैल, मानुषोत्तर नाम का पहाड़ है। तस्मात् प्रागेव मनुष्य न बहिरिति, उसके पहले ही मनुष्य हैं बाहर नहीं है। ततो न बहि पूर्वोक्त क्षेत्र विभागोस्ति, इसलिए उससे बाहर पूर्वोक्त क्षेत्रों का विभाग नहीं होता। न नास्माद् उत्तरम कदाचिदपि विद्याधरा रिद्धि प्राप्ता अपि मनुष्या गच्छन्ति अन्यत्रोपपाद समुद्घाताभ्याम, बोले कि उस मानुषोत्तर से आगे कभी विद्याधर या रिद्धि को प्राप्त करने वाले बड़े बड़े मुनिराज भी मनुष्य पर्याय में नहीं जाते वहां मानुषोत्तर पर्वत के आगे। अन्यत्र, अब उसमें एक अपवाद बता दिया कि उपपाद और समुद्घात, उपपाद यानी अगर देव पर्याय में किसी जीव को उत्पन्न होना है और समुद्घात करना है किसी को, तो समुद्घात के उपपाद समुद्घाताभ्याम द्विवचन दिया है। उपपाद का मतलब क्या लेंगे इस, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर अर्थ है। मनुष्योत्तर पर्वत के आगे से मान लो कोई वेंतर मनुष्य पर्याय में आकर के यहाँ उत्पन्न होना चाह रहा है, तो फिर वहाँ उसकी आयु पूर्ण हुई है तो मनुष्य आयु प्रारंभ हो गई और अभी वो बाहर है मनुष्योत्तर पर्वत के, तो उस अपेक्षा से बन सकता है, जाएगा नहीं आते समय, हाँ आते समय बने, अभी वहाँ है वो, मतलब जीव वहाँ से अंदर आएगा उस अपेक्षा से। उपपाद हो गया, फिर समुद्घात, अब समुद्घात की अपेक्षा से क्या, केवली भगवान पूरे लोक पूर्ण तक समुद्घात करते हैं, तो मानुषोत्तर पर्वत तो बहुत छोटा हो गया, तो बहुत पूरे लोक में भगवान तो व्याप्त रहते हैं उस एक समय के लिए, तो फिर वो बन सकता है। और इसी प्रकार समुद्घात मारणांतिक समुद्घात भी हो सकता है, तो ऐसे समुद्घातों की अपेक्षा से और उपपाद की अपेक्षा से। अब उपपाद में क्या है कि अकेले देवों की बात नहीं है, कोई त्रियंच भी, मान लो स्वयंभू रमण समुद्र से कोई मत्स्य या फिर स्वयंभू रमण द्वीप से कोई और प्राणी यहाँ मनुष्य पर्याय में आने वाला है, तो वहाँ जैसे ही उसका शरीर छूटा मनुष्य आयु शुरू हो जाती है, वहाँ पहले वहाँ मरण हुआ और फिर ये दूसरी आयु चालू, तो फिर वहाँ से जब तक यहाँ पहुँचेगा तब तक वो बाहर का जितना क्षेत्र कवर करेगा, जितने क्षेत्र का स्पर्श करेगा, वो पूरा मनुष्य पर्याय के साथ ही होगा। हाँ, आने के बाद यहाँ शरीर धारण करेगा वो एक अलग बात, लेकिन मनुष्य आयु तो शुरू हो गई, वो मनुष्य ही माना जाएगा वो, तो उस अपेक्षा आकार प्रकार जो है वो गत्यानुपूर्वी के अनुसार पूर्व शरीर जैसा आकार रहता है उसका, लेकिन आयु मनुष्य आयु होती और उदय भी मनुष्य गति का होता है। तत्तो स्यान्वर्थ संज्ञा, इसलिए इस पर्वत की जो संज्ञाएं हैं वो अन्वर्थ यानी सार्थक है, मानुषोत्तर एवं इस प्रकार जम्बूद्वीपादिश्वार्ध तृतीयेषु, जम्बूद्वीप आदि अर्ध तृतीय माने तीन में आधा कम कर लिया, द्वीपेशु इन ढाई द्वीपों में, और द्वयोश्च समुद्रयोर और दो समुद्रों में मनुष्या वेदितव्या, मनुष्य जान लेने चाहिए माने मनुष्य इतने में ही रहते हैं, ते द्विविधा मनुष्य के दो भेद हैं, कौन से, आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ ये मनुष्यों के दो भेद हैं। गुणैर गुणवद भिर्वा अर्यन्ते इति आर्याः, गुणों के साथ और गुणवानों के साथ जो अर्यन्ते पाए जाते हैं वे आर्य हैं। ते द्विविधाः वो दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य, रिद्धियों को प्राप्त हो चुके जो आर्य हैं वे, और अनिद्धि प्राप्त आर्य चेति, अथवा रिद्धियों को जो प्राप्त नहीं कर पाए ऐसे आर्य। अनिद्धि प्राप्त आर्य पंचविधाः, जिनको रिद्धियां प्राप्त नहीं है वो पांच प्रकार के हैं, मनुष्यों के भेद है ये, क्षेत्रार्य जात्यार्य कर्मार्य चारित्रार्य दर्शनार्य चेति। क्षेत्र संबंधी आर्य, आर्यखंड में पैदा हो जाए तो क्षेत्रार्य, अथवा जिनकी जाति आर्य में मानी जाती है वो जात्यार्य है, फिर कर्मार्य जिनके कार्य आर्य वाले कार्य हैं तो वो कर्मार्य कहलाते हैं, फिर चारित्रार्य जिन्होंने चारित्र धारण किया है वो चारित्रार्य, दर्शनार्य माने सम्यक दर्शन को जिन्होंने प्राप्त किया है वो दर्शनार्य है। क्या वर्गीकरण है, माने जैन शास्त्र में जो वर्गीकरण है सुंदर वर्णन है, विभाजन जो करते हैं बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन करते हैं, इंग्लिश में वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर रिद्धि प्राप्त आर्य सप्तविधाः, रिद्धियों को प्राप्त करने वाले जो आर्य हैं वो सात प्रकार के हैं, कौन से, तो बुद्धि विक्रिया तपो बलौषध रसाक्षीण भेदात, सात प्रकार की रिद्धियों के नाम दे दिए, बुद्धि रिद्धि विक्रिया रिद्धि तपो तप रिद्धि बल रिद्धि औषध रिद्धि रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, सात हो गए क्या? सप्त ऋषि की पूजा अलग है, वो अलग है, वो तो सात संख्या थी उन ऋषियों की, वो यहां तो रिद्धियां सात प्रकार की है वो बता रहे हैं। बुद्धि रिद्धि वैसे इनके विस्तार करो तो 64 हो जाएंगी रिद्धियां, बुद्धि रिद्धि के 18 वेद, अपन पिछले साल वहां पर धनलक्ष्मी में हमने नित्या प्रकंपा भूत कैवल होगा उस पर भी हमने पूरा व्याख्यान किया था, वो हर साल कुछ कोर्स बदलता है थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्टस और फिर वहां पर और भी एक दर्शन पाठ और लिया था। बुद्धि रिद्धि उसके 18 भेद होते हैं, विक्रिया रिद्धि उसके करीब 11 भेद होते हैं, फिर तपो तप रिद्धि जो है, तप रिद्धि में उग्र तप दीप तप घोर तप महातप और उग्र तवे दीप्त तवे तत्त तवे घोर तवे ये महातवे, पांच प्रकार के भेद हैं। फिर बल रिद्धि में तीन भेद, मनबल वचन बल काय बल, औषध रिद्धि में, औषधि में भी अनेक प्रकार के भेद हैं, जल औषध मल औषध विप्रुट औषध, ऐसे अलग अलग प्रकार के औषध रिद्धियां हैं, और एक सर्वौषध भी होती है कि उनके सारे के सारे औषध रूप परिणत हो जाते परमाणु, वो फिर रस रिद्धि, रस रिद्धि में क्या होता है कि आहार जो ग्रहण करते हैं वो उस रस रूप परिणत हो जाते हैं, उनके हाथ में जो भी डालो, मान लो घृतस्रावी नाम की रिद्धि हो किसी साधु को तो वो घृत रूप परिणत हो जाएगा जो भी आहार आप देंगे, क्षीरस्रावी हो तो क्षीर रूप परिणत हो जाएंगे, घृतस्रावी को सर्पिस स्रावी बोलते हैं, सर्पिह ये शब्द घी का पर्यायवाची है संस्कृत भाषा में, सर्पिह सर्प लिख लो उसमें छोटी की मात्रा और फिर विसर्ग, सर्पिह स्रावी घी का पर्यायवाची शब्द। फिर रस रिद्धि में और भी अमृत स्रावी ऐसे कई नाम है उसके, नमो अमीय सवीणम नमो सप्पि सवीणम नमो खीर सवीणम, ऐसे वो सब रस रिद्धियों के भेद हैं। फिर अक्षीण रिद्धि के दो भेद होते हैं, अक्षीण आलय और अक्षीण महानस, महान इसका अर्थ रसोई है, जिनके घर आहार हो जाए वो रसोई खाली ना हो सूर्यास्त तक। और अक्षीण महालय माने स्थान में कभी भी कमी ना पड़े, जहां भी वो विराजमान हो, छोटे से जगह पर भी जितने लोगों को आना आ जाओ, कोई कमी नहीं पड़ेगी जगह की। इसीलिए तो समोह शरण में असंख्यात जीव बैठते हैं। समोह शरण में आदिनाथ भगवान का 12 योजन का समोह शरण था, अब सभा भूमि में 12 कक्ष थे। महावीर भगवान का 1 योजन का था, उसमें भी 12 कक्ष थे, लेकिन वो असंख्यात देव कैसे बैठे होंगे? मनुष्य तिरंज संख्यात रहते हैं, लेकिन देव तो असंख्यात है, कैसे बैठेंगे? बस वो रिद्धि के प्रभाव से, वरना बैठना तो संभव नहीं वैसे। अब यहाँ अभी पंचम काल में तो धक्का मुक्की हो जाए लेकिन वहां ये होता नहीं, रिद्धि का परिणाम। म्लेच्छ द्विविधा, म्लेच्छ दो प्रकार के, अंतर्द्वीपजाः कर्म भूमिजाश्चेति। अंतर्द्वीपज यानी अंतर्द्वीप माने समुद्रों में जो एक कुछ टापू बने हुए हैं वहां पर रहने वाले, वहां जन्म लेने वाले, और कर्म भूमि याश्चेति, और कर्म भूमि में जन्म लेने वाले भी म्लेच्छ होते हैं। तत्रांतरद्वीपा लवणो दधेर अभ्यंतरे, उनमें जो अंतर्द्वीप है वो लवणो दधि के भीतर पार्श्वे पार्श्व भाग में अष्टासु दिक्ष्वष्टौ, 8 दिशाओं में 8 है। तदंतरेषु चाष्टौ, अंतर दिशाओं में 8 है, अंतरेषु यानी उनके बीच में। हिमवत् शिखरिणो रुभयतोष रुभयोश्च, हिमवत और शिखरिणी, शिखरिण इन दोनों पर्वतों के उभयो, उभयोश्च, उभयोश्च छपाए क्या? तो उभ शब्द से बना होगा, दो मतलब व्याकरण में हम बहुत सोच रहे हैं, मतलब व्याकरण से कैसे बनाए ये शब्द, उभ शब्द से बन सकता है उभयोश्च, और उभय शब्द से बनाएंगे तो उभययोश्च ऐसा बनेगा, द्विवचन का प्रयोग है। तो हिमवान और शिखरी पर्वत के दोनों तरफ विजयार्धयो रंतेष्वष्टो, और विजयार्ध दो विजयार्ध योर दो विजयार्धों के अंतेषु, अंतेषु यानी किनारों पर। अब दो विजयार्धों के किनारे कितने हो जाएंगे? 4, तो इसलिए उसको अंतेषु कह दिया, अष्टौ 8। दो विजयार्धों के किनारे 4 हुए और वहां अंतरद्वीप 8 हो गए, तत्र दिक्षु द्वीपा, उनमें फिर दिशाओं में जो द्वीप हैं, वेदिकाया स्थिर्यक, वो वेदिका समुद्र के किनारे जो द्वीप की वेदिका होती है वहां तिर्यक, तिरछी तरफ देखेंगे आप तो पंच योजन शतानि प्रविश्य भवन्ति, 500 योजन प्रवेश करने के बाद पानी के अंदर वो द्वीप मिलते हैं दिशाओं वाले। और विदिक्ष्वंतरेषु च, और विदिशाओं में और अंतरालों में जो द्वीप होते हैं वो पंचाशत पंच योजन शतेषु गतेषु भवन्ति, 550 योजन आगे मिलते हैं। और शैलांतेषु द्वीपाः षट योजन शतेषु गतेषु भवन्ति, और पहाड़ों के किनारों पर जो द्वीप है वो द्वीप 600 योजन आगे पानी में जाने के बाद मिलते हैं। दिक्षु द्वीपा दिशाओं में जो द्वीप है वो शत योजन विस्तारा 100 योजन चौड़े हैं। विदिक्ष्वंतरेषु च द्वीपास तदर्थ विश्वकंबा, विदिशाओं में और अंतरालों में जो द्वीप है वो उनसे आधे चौड़े हैं यानी 50 योजन चौड़े हैं। शैलांतेषु और पर्वतों के अंत भागों में जो द्वीप है वो पंचविंशति योजन विस्तारा 25 योजन चौड़े हैं। तत्र पूर्वस्याम दिश्येको रुकाः, उनमें जो पूर्व दिशा वाले जो द्वीप हैं अंतरद्वीप, वहां पर एकोरुका एक पैर वाले मनुष्य हैं। अपरस्याम दिशि लांगुलिनः, पश्चिम दिशा में जो द्वीप है वहां पर रहने वाले मनुष्य पूछ वाले हैं लांगुलिनः। उत्तरस्याम दिश्यभाषकाः, उत्तर दिशा वाले जो हैं वो गूंगे हैं। दक्षिणस्याम कुपात्रों को दान देने का फल है, कुपात्र दान देने से ऐसी भोग भूमि मिलती है और सुपात्र को दान देने से वैसी मिलती है जहां पर सब ठीक ठाक है। ये कुभोग भूमि कहलाती है। उत्तरस्यां दिशि अभाषका, उत्तर दिशा में अभाषक माने जो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। फिर दक्षिणस्यां दिशि विषाणिनः, दक्षिण दिशा में विषाण यानी सींग वाले हैं।